ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 260। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सब जगत आकाश में आकाश रूप अपने आप में स्थित है और अणु अणु प्रति सर्वदा सृष्टि है, परंतु सब आभास मात्र है। तो चैत्य संबंधी होकर जीव सृष्टि का अंत ले तो सृष्टि अनंत है, इसका अंत कहीं नहीं आता। यह सृष्टि अविद्या रूप है, वह अविद्या ही चैत्य है। जब जीव अविद्या संबंधी होकर जगतों का अंत देखेगा तब अंत कहीं ना आवेगा। किंतु संसरण का नाम संसार है। जब स्वरूप में स्थित होंगे तब सब जगत ब्रह्मरूप हो जावेगा और जगत की कल्पना कुछ न भासित होगी। हे रामचंद्र जी, इस जगत के आदि में भी अद्वैत सत्ता थी, अंत में भी अद्वैत सत्ता रहेगी और मध्य में जो कुछ दिखता है उसको भी वही रूप जानो, और कुछ बना नहीं। यह जगत अकारण है, अधिष्ठान सत्ता के अज्ञान से भासित होता है, इसी का नाम जगत और इसी का नाम अविद्या है। अधिष्ठान को जानने का नाम विद्या है। हे रामचंद्र जी, न कोई अविद्या है और न जगत है, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। चाहे जगत कहो और चाहे ब्रह्म कहो, दोनों एक ही वस्तु के नाम है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह मैंने जाना कि जगत अकारण है। जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर होता है वैसे ही यह जगत है, पर जो अकारण ही है तो अब यह सब पदार्थ कारण से उपजते क्यों देख पड़ते हैं? कारण बिना तो नहीं होते, फिर ये क्यों भासित होते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्म सत्ता सर्वात्म है, उसमें जैसे निश्चय होता है वैसा ही होकर दिखता है। पर क्या दिखता है? अपना अनुभव ही ऐसा होकर दिखता है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही नाना प्रकार के पदार्थ होकर दिखता है, परंतु उपजा कुछ नहीं, सब पदार्थ आकाश रूप है, वैसे ही यह जगत कुछ उपजा नहीं, कारण से रहित आकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, आदि सृष्टि अकारण हुई है, पीछे से सृष्टि में आभास रूप मन ने जैसा जैसा निश्चय किया है वैसे ही दिखता है, क्योंकि मन सर्वशक्ति रूप है। आदि सृष्टि जो उपजती है वह अकारण रूप है, पीछे से सृष्टि काल में कारण कार्य रूप हुए है। जैसे स्वप्न सृष्टि आदि कारण बिना होती है और पीछे से कारण कार्य दिखते हैं, पर वास्तव में न कोई आकाश है, न शून्य है, न अशून्य है, न सत्य है, न असत्य है, न सत्य असत्य के मध्य है, न नित्य है, न अनित्य है, न वह परम है, न अपरम है, न शुद्ध है, न अशुद्ध है, द्वैत कुछ नहीं, सब ब्रह्म है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को सब शब्द और अर्थ ब्रह्मरूप भासित होते हैं, मुझको तो कारण कार्य भाव की कल्पना कुछ नहीं। जैसे सूर्य में अंधकार का अभाव है वैसे ही ज्ञानवान के लिए कारण कार्य का अभाव है। जो सब आत्मा ही है तो कारण या कार्य किसको कहिए? राम जी ने कहा है भगवान, मैं ज्ञानी की बात पूछता हूं, उनको कारण कार्य भाव किस कारण नहीं भासित होता? जो कारण कार्य नहीं तो मृत्तिका और कुम्हार आदि द्वारा घट आदि क्यों कर उत्पन्न होते देख पड़ते हैं? बताइए, ज्ञानवान को अकारण कैसे दिखता है और अज्ञानी को सकारण क्यों कर भासित होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, न कोई कारण है, न कार्य है और न कोई अज्ञानी है। मैं तुमसे क्या कहूं? जो ज्ञानवान पुरुष है उनके निश्चय में जगत की कोई कल्पना नहीं फुरती। उनके निश्चय में तो जगत है ही नहीं। तब ज्ञानी और अज्ञानी क्या? हे रामचंद्र जी, आकाश में वृक्ष ही नहीं तो उसका वर्णन क्या कीजिए? जैसे हिमालय पर्वत में अग्नि का कण नहीं पाया जाता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में जगत नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी, कारण और कार्य, ये शब्द जगत में होते हैं। पर जब जगत ही नहीं उपजा तो कारण कार्य, ज्ञानी और अज्ञानी तुमसे क्या कहूं? जैसे स्वप्नों की सृष्टि सुषुप्ति में लीन हो जाती है और वहां शब्द और अर्थ कोई नहीं फुरता, वैसे ही ज्ञानवान के निश्चय में जगत ही नहीं फुरता है। हे रामचंद्र जी, मुझको तो सब ब्रह्म ही भासित होता है। मुझको कुछ कहना नहीं, परंतु तुमने पूछा है इसलिए अज्ञानी के निश्चय को अंगीकार करके कुछ कहता हूं। हे रामचंद्र जी, यह जगत अकारण और आभास मात्र है, किसी आरंभ और परिणाम से नहीं हुआ। जब पदार्थों का कारण विचारिए तो सबका अधिष्ठान ब्रह्म ही निकलता है। वह द्वैत, अच्युत और सब इच्छाओं से रहित है, तब उसको कारण कैसे कहिए? इससे जाना जाता है कि जगत आभास मात्र है और कुछ वस्तु नहीं। आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अकारण होती है और उसमें अनेक पदार्थ दिखते हैं, पर उसका कारण विचारिए तो सबका अधिष्ठान अनुभव ही निकलता है। उसमें आरंभ और परिणाम कुछ नहीं हुआ। सृष्टि अनुभव रूप भासित होती है। जो पुरुष स्वप्न देख रहा है उसको स्वरूप के प्रमाद से कारण कार्य जगत और पुण्य पाप सब यथार्थ लगते हैं, वैसे यह जागृत जगत दिखता है। हे रामचंद्र जी, आदि सृष्टि अकारण हुई है, पीछे सृष्टि काल में कारण कार्य रूप भासित होते हैं। जिसको अपना वास्तव स्वरूप स्मरण है उसको अकारण दिखती है, और जिस अज्ञानी को अपने वास्तव स्वरूप का प्रमाद है उसको कारण कार्य रूप सृष्टि भासित होती है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में एक ही अनुभव आत्मसत्ता है, परंतु जैसा जैसा अनुभव में संकल्प दृढ़ होता है उसी की सिद्धि होती है, और जिसका तीव्र संवेग होता है वही होकर दिखता है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि कल्प वृक्ष के पदार्थ संकल्प की तीव्रता से प्रतीत होते हैं, तो उन्हें किसका कार्य कहिए? यदि जगत किसी कारण से उत्पन्न होता तो महाप्रलय में भी कुछ शेष रहता। जैसे अग्नि के पीछे राख रह जाती है, पर जगत के पीछे तो कुछ नहीं रहता। जैसे स्वप्न की सृष्टि जागने पर कुछ नहीं रहती, वैसे ही महाप्रलय में जगत का शेष कुछ नहीं रहता। इससे जाना जाता है कि यह जगत आभास मात्र है। जैसे ध्यान में ध्याता पुरुष किसी आकार को रचता है तो उसका कारण कार्य नहीं होता, वह तो आकाश रूप है और अनुभव सत्ता ही फूरने से इस प्रकार होकर भासित होती है, आकार तो कोई नहीं। और जैसे गंधर्व नगर कारण से रहित दिखता है, वैसे ही यह जगत कारण बिना प्रकट हुआ है। न कोई पृथ्वी है, न कोई जल है, न तेज वायु और आकाश है, सब आकाश रूप है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से पिंडाकार भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जब मनुष्य मर जाता है तब शरीर यही भस्म हो जाता है, फिर जीव परलोक में अपने साथ शरीर देखता है और उस शरीर से स्वर्ग नरक में सुख दुख भोगता है, तो उसका कारण कौन है? उसका कारण कोई नहीं पाया जाता। केवल चेतनता में संकल्प रूप वासना जो दृढ़ हुई है उसी के अनुसार शरीर भासित होता है और स्वर्ग नरक में दुख सुख भासित होते हैं। और जो कुछ वस्तु नहीं, सब पदार्थ संकल्प के रचे हुए हैं, वे सब आत्मरूप हैं। जैसे आकाश व्योम और शून्य एक ही वस्तु के नाम हैं, वैसे कोई जगत कहो और कोई ब्रह्म कहो, इनमें भेद नहीं है। फुरने का नाम जगत है और न फुरने का नाम ब्रह्म है। जैसे वायु के चलने और ठहरने में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म को संवेदन के फुरने और न फुरने में कुछ भेद नहीं है। जो सम्यक दर्शी है उनको सब जगत ब्रह्म स्वरूप दिखता है, इस कारण दोष किसी में नहीं रहता, और जो बड़ा कष्ट प्राप्त होता है तो भी उन्हें खेद नहीं होता। जैसे कोई पुरुष स्वप्न में युद्ध करता है और उसको अपना जागृत स्वरूप स्मरण हो आता है तो वह स्वप्न को स्वप्न जानता हुआ युद्ध करता है तो भी दुख नहीं होता। वैसे ही जो पुरुष परम पद में जागा है उसकी सब क्रियाएं होती हैं, परंतु वह अपने को अक्रिय जानता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान की सब चेष्टाएं होती है, परंतु उसके निश्चय में क्रिया का अभिमान नहीं होता। जैसे नट सब स्वांग भरता है परंतु अपने को स्वांग से अलग और स्वांग की क्रिया को असत्य जानता है, क्योंकि उसको अपना स्वरूप स्मरण रहता है। वैसे ही ज्ञानवान सब क्रियाओं को असत्य जानता है। हे रामचंद्र जी, ये सब पदार्थ अजात जात है, उपजे नहीं। जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, अपना अनुभव ही इस प्रकार दिखता है, वैसे ही ये जगत के पदार्थ भी अनुभव रूप ही जानो। हे रामचंद्र जी, बहुत शास्त्र और वेद मैं तुमको किस लिए सुनाऊं और किस लिए पढ़ूं? वेदांत शास्त्रों का सिद्धांत यही है कि वासना से रहित हो, इसी का नाम मोक्ष है। वासना सहित का नाम बंधन है। वासना किसकी कीजिए? यह सब सृष्टि तो अकारण भ्रम मात्र है, इसमें क्या आस्था बढ़ाइए? ये विषय तो स्वप्न के पर्वत है। श्री राम जी ने पूछा है, भगवान सब जगतों में तीन प्रकार के पदार्थ है, एक अप्रत्यक्ष पदार्थ, दूसरे प्रत्यक्ष पदार्थ और तीसरे मध्यभावी। जैसे वायु अप्रत्यक्ष है क्योंकि रूप से रहित है, परंतु स्पर्श से प्रतीत होती है, इसलिए मध्यभावी प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष वह जो किसी को मिले नहीं, ऐसी वह सम्मित अप्रत्यक्ष है। हे मुनीश्वर, चंद्रमा के मंडल में भी यह संवेदन जाता है और फिर गिरता है, और चित्त से चंद्रमा को देखता है और फिर आता है, इससे जाना कि यह निराकार है। जो साकार होता तो चंद्रमा रूप हो जाता, फिर लौट कर न आता। जैसे जल में डाला हुआ जल फिर नहीं निकलता, इस कारण जानता हूं कि यह अप्रत्यक्ष अर्थात निराकार है। हे मुनीश्वर, अज्ञानी का आशय लेकर मैं पूछता हूं कि इस शरीर में जो प्राण आते जाते हैं वे कैसे आते जाते हैं? जो तुम कहो कि संवित जो ज्ञान शक्ति है इस शरीर और प्राण को लिए फिरती है, जैसे मजदूर भार को लिए फिरता है, तो ऐसे कहना ठीक नहीं, क्योंकि संवित अप्रत्यक्ष निराकार है, अप्रत्यक्ष साकार से नहीं मिलता, तब वह चेष्टा क्यों कर करें? जो कहो कि निराकार संवित ही चेष्टा करती है, तो पुरुष के संवित चाहती है कि पर्वत नृत्य करे, पर वह तो इसका चलाया नहीं चलता, और कहते हैं कि ये पदार्थ उठ आवे, परंतु वे तो नहीं उठते, क्योंकि पदार्थ साकार है और वृत्ति निराकार है। इसका क्या उत्तर है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस शरीर में एक नाड़ी है, जब वह अवकाश रूपी होती है तब उसमें से प्राणवायु निकलता है, और जब संकोचन रूप होती है तब प्राणवायु भीतर आता है। जैसे लोहार की धोकनी होती है वैसे ही इसके भीतर पुरुष बल है, उससे चेष्टा होती है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, धोकनी भी तब चलती है तब उसके साथ बल का स्पर्श होता है, और स्पर्श तब होता है जब प्रत्यक्ष वस्तु होती है, पर चेतनता तो निराकार है, उसको स्पर्श क्यों कर कहिए? जो तुम कहो कि उसकी इच्छा ही से स्पर्श होता है, तो हे मुनीश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरे सम्मुख जो वृक्ष है वह गिर पड़े, पर वह तो नहीं गिरता, क्योंकि इच्छा निराकार है। जो साकार से स्पर्श हो तब उसकी शक्ति से गिर पड़े। यदि इच्छा से ही चेष्टा होती तो कर्म इंद्रिया किस लिए है? इच्छा ही से जगत की चेष्टा हो, यह भी संशय है कि एक के बहुत क्यों कर हो जाते हैं, और बहुत का एक क्यों कर हो जाता है? एक चैतन्य है, पर जब प्राण निकल जाते हैं तब पाषाण और वृक्ष की नहीं जड़ हो जाता है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, पर जड़ कैसे हो जाता है? कोई पाषाण और वृक्ष रूप जड़ है और कोई चेतन है, यह भेद एक आत्मा में कैसे हुआ? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम्हारे संशय रूपी वृक्षों को मैं वचन रूपी कुल्हाड़ से काटता हूं। जिनको तुम प्रत्यक्ष साकार कहते हो सो उनमें आकार कोई नहीं, सब निराकार है, वह शुद्ध आत्मा अद्वैत सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। ये आकार कुछ बने नहीं, जैसे स्वप्न नगर में जो आकार दिखते हैं वे सब आकाश रूप निराकार है, वैसे ही ये आकार भी जो तुमको दिखते हैं सब निराकार है। स्वप्न में जो पर्वत दिखते हैं वे किसके आश्रय होते हैं, और देहादिक देखते हैं वे किसके आश्रय है, इसलिए वे कुछ बने नहीं। अनुभव सत्ता ही आकार रूप होकर दिखती है, वैसे इसे भी जानो कि आकार कोई नहीं। हरि ओम, हरि सनावतु सनोभुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।